मुझको बसाया जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों के पावन झील में बाबा,
शांति। एक पेंसिल बनाने वाले व्यक्ति ने पेंसिल जब अपनी बनाई हुई पेंसिल का बॉक्स सामने रखा और वो सारी पेंसिल दुकान में भेजने वाला था बेचने के लिए, तो उसने एक पेंसिल उठाई और उस पेंसिल से बातें करने लगा। उस पेंसिल से उसने कहा कि हे पेंसिल, मैंने तुझे बनाया है और अब तुम जा रही हो संसार में नया जीवन चालू करने, तो पांच बातें याद रखना। सबसे पहले, हमेशा अपने आप को किसी के हाथ में सौंप देना। पेंसिल से कहा कि हमेशा अपने आप को किसी के हाथ में सौंप देना, ताकि तुम्हारा प्रयोग संसार कल्याण के लिए हो सके। दूसरा, तुम्हें बहुत छीला जाएगा, बहुत दर्द होगा, बहुत पीड़ा होगी, परंतु जितना तुम्हें छीला जाएगा उतनी ही तुम शार्प तीक्ष्ण होगी और तुमसे संसार का कल्याण होगा। तीसरी बात कही, हे पेंसिल, तुम लिखते जाना, कभी भी मत रुकना, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी सहन करना पड़े, लिखते जाना। चौथा, हमेशा ये याद रखना, जो बाहर है वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो अंदर है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और पांचवा, यदि लिखते लिखते कुछ गलत लिख दिया तो तुम उसको मिटा भी सकती हो। तो वो पेंसिल का मालिक उस पेंसिल को ये पांच शिक्षाएं देता है। ये पांच शिक्षाएं केवल उस पेंसिल के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। और जब भगवान ने हमें ब्राह्मण बनाकर संसार में भेजा, तो सबसे पहला नियम है, अपने आप को उस परमात्मा के हाथ में सौंप दो। क्योंकि जब हम उसके हाथ में सौंपे जाएंगे तो हमारे हाथों से उत्कृष्ट कलाकृति निर्माण होगी, हमारे हाथों से आत्माओं का भाग्य बनेगा, हमारे हाथों से विश्व का कल्याण होगा। और हमारे जीवन का एक पल भी ऐसा ना हो कि जिसमें हम किसी का कल्याण ना कर रहे हो। हमारा खड़े रहना, हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारी चलन, हमारे संकल्प, हमारे बोल जगत का उद्धार करे। सुबह की अव्यक्त वाणी बाबा ने कहा, मोह को रूपांतरित कर दो, पाप में मोह हो। एक पल भी जैसे मोह में, जिससे मोह से दूर नहीं रहा जाता, वैसे पाप से एक पल भी दूर ना रहे। तब तुम्हारी आंखों से आत्माओं को पाप दिखाई दे, और जब तुम बोलो तो तुम्हारे मुख से केवल ईश्वरीय महावाक्य ही निकले। सौंप देना, स्वयं को अर्पित कर देना, स्वयं को समर्पित कर देना, स्वाहा कर देना। दूसरा, तुम्हें बहुत छीला जाएगा, परिस्थितियां, विघ्न, समस्याएं बहुत आएंगी। ये मार्ग ऐसा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जो जितनी महान बनेगी उतनी उसको उतनी महान समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जो जितना महानता के शिखर पर पहुंचेगा उसको बहुत सहन करना पड़ेगा। सूरज रे जलते रहना, तो जल जल रे किरने लुटा, लिखा है यही तेरे भाग में, ये रहे तेरा जीवन आग में, तुझे भेजा है ज्वाला के भवन में, हे सूरज तू जलते रहना। जो जितना ज्यादा सहन करता है वो एक दिन उतना ही महान बन जाता है, या फिर जिसने महान बनने का लक्ष्य रखा है उसे बहुत सहन करना पड़ेगा। ये संसार हर तरीके से, हर तरह से परीक्षा लेगा। लौकिक वाली परीक्षा लेंगे, अलौकिक वाले परीक्षा लेंगे। ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा वत्सों से कहते थे कि जब तुम मार्केट में, बाजार में जाते हो और दो आने का घड़ा खरीदना होता है तो क्या करते हो? ठोक पीटते हो। मैं तुम्हें विश्व की बादशाही ऐसे दे दूं, बिना ठोक के पीटे, बिना परीक्षाएं लिए आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा, कठिन से कठिन परिस्थितियां आएगी, वो परिस्थितियां जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं था, वो समस्याएं अपने पराए हो जाएंगे, मित्र दुश्मन हो जाएंगे, सब होगा। इधर खोखली में सर दिया तो मुसलों से क्या डर, यदि ये यज्ञ खोखली है तो एक एक ब्राह्मण आत्मा क्या है? मुसल। यदि ये ब्राह्मण परिवार एग्जामिनेशन हॉल है तो एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर। सभी हमारे पेपर लेंगे, जो अभी अभी ज्ञान में आए वो भी देखेंगे, एक भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही वो हमें अपना राजा कैसे बना देंगे। योग्य चाहिए जो राजा बनने वाला है। इस संसार में द्वापर से अब तक ऐसी कोई आत्मा नहीं हुई उसे जिसे सहन नहीं करना पड़ा, बहुत सहन करना पड़ा। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर हुए हैं, वो भिक्षा मांगने जाते हैं, लोग थू थू करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनकी जो झोली है वो कहते दो हम तुमको भिक्षा देंगे, लेते और उसको फाड़ देते, नीचे पैरों तरे कुचल देते। और रोते हुए वो बच्चा मां के पास आता है और पूछता है हम सहन भी कितना करें। उसकी मां कहती है समाधाना ने दुख सहन करने ही पन तपश्चर्या चाहे। जीवन में आई हुई परिस्थितियों को सहन करना, और सहन करना इसका अर्थ यह नहीं है कि चुप बैठ जाना, और सहन करना इसका अर्थ यह नहीं है कि बदलाव का प्रयत्न ना करना। सहन करना अर्थात पॉजिटिव रिस्पॉन्स, सहन करना अर्थात कायरता, विरूपण नहीं। सहन केवल महान आत्माएं कर सकती, और हम सहन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये परमात्मा आदेश, भगवान कह रहा है। तुम्हें चीला जाएगा, दर्द होगा। तीसरा, लिखते जाना, रुकना नहीं। कोई कितना भी रोके, बंधन डाले, बाधा डाले, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। अध्यात्म अर्थात और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे, एंड अहेड एंड अहेड एंड अहेड, डोंट स्टॉप। कहीं पर भी नहीं रुकना। चौथा, जो अंदर है वो महत्वपूर्ण है, जो बाहर है वो नहीं। जो चेतना में है वो महत्वपूर्ण है, अंतरतम में कैसी भावनाएं हैं वो महत्वपूर्ण है, बाहर जो है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं। बाहर शब्द है, व्यवहार है, सेवाएं है, विस्तार है, ये कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं। अव्यक्त मां बाप के है बाबा के, सेवा के मार्क्स किस आधार पर मिलेंगे? सेवा के मार्क्स इस आधार पर नहीं मिलेंगे कि कितनों को कोर्स कराए और कितने भाषण दिए। बाबा के महावाक्य है 20 सेंटर है परंतु 10 हिल रहे, इससे मार्क्स नहीं मिले। मार्क्स मिलने का आधार है सेवा करते समय स्वयं शक्तिशाली कितने रहे और दूसरों को सहयोगी और शक्तिशाली कितना बनाए। 1000 स्टूडेंट्स पर एक भी धारणा युक्त नहीं, एक भी योगी नहीं। 10 स्टूडेंट पर 10ों के 10ों योगी, मार्क्स इधर ज्यादा है। सेवाओं के विस्तार में स्वस्थिति को दांव पर नहीं लगाना है। स्थिति सबसे टॉप प्रायोरिटी, प्राथमिकता है स्थिति को, फिर संबंध व्यक्ति और तीसरा सेवा। चलते जाना, अंदर जो है वो अधिक महत्वपूर्ण है। अंदर भावनाएं कैसी है, सूक्ष्म संकल्प कैसे है, और एकांत में व्यक्ति क्या करता है जब कमरे में बंद है, तब वो उसका चरित्र है। चरित्र वो नहीं है वो दूसरों के सामने क्या बोलता है, चरित्र वो है जो अकेलेपन में एकांत में वो क्या करता है। और पांचवा, अगर कुछ गलती हुई तो क्या करना है, ए पेंसिल तुम उसको मिटा सकती हो रबर से। अगर यहां पर भी गलतियां हुई है, कब हुई है, ब्राह्मण बनने के बाद किए अपराध, ब्राह्मण बनने के बाद किए हुए पाप, ब्राह्मण बनने के बाद किए हुए कुकर्म विकर्म उल्लंघन मर्यादा भंग लक्ष्मण रेखा पार मनमत परमत, इसका बोझ ज्यादा है। किसी मुरली में बाबा ने कहा था, जब तुम आत्मा देखते हो तो पुण्य करते हो और जब तुम शरीर देखते हो तो पाप करते हो। अब कितना हिसाब है इसका। हमें याद है हमारी सेवाएं कितनी है, पर यह याद नहीं है हमारे पाप कितने हैं। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के इन्वर्टेड कॉमा, तुम्हें यह बहुत याद है कि तुम्हारे मार्क्स कितने जमा हो गए हैं, पर इसका तुम्हें कोई ख्याल नहीं है कि तुम्हारे मार्क्स कट कितने हुए हैं। बड़ी बड़ी सेवाएं की, पर आपस में टकराव था, अभी अभी हम एक सेंटर पर गए थे, वहां के भाई कह रहे थे ये सेंटर 30 साल से है और आज तक मैंने इस सेंटर में एक भी विघ्न नहीं देखा, क्योंकि यहां पर जो बहनें रहती है इनका 4 घंटे का योग का चार्ट है बैठ के। प्राथमिकता योग है या सेवा सोचना है। तो जैसे उस पेंसिल के मालिक ने उस पेंसिल को 5 शिक्षाएं दी और उसमें से पहली शिक्षा थी स्वयं को किसी के हाथ में सौंप दो, और जिसके हाथ में सौंप दो उसी की याद में रहो। याद एक रस्य याद, इस याद की 10 परिभाषाएं हैं। बाबा को याद करने की 10 डेफिनेशंस है। सबसे पहला याद अर्थात स्मृति, रिमेम्बरेंस, स्मृति स्वरूप, उसका ख्याल, उसकी मेमोरी, उसके विचार, उसके बारे में सोचना, कल्पना करना, ये पहली परिभाषा। दूसरा याद अर्थात संबंध, याद की दूसरी परिभाषा है संबंध कितना गहरा है। जैसे लौकिक से हमारे संबंध कितने गहरे हैं, ब्लड रिलेशंस, खून के नाते, क्या उतना ही गहरा, उतना ही डेप्थ में हमारा बाबा से संबंध है। यदि हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम बेहोशी की हालत में है, हमने देखा ब्राह्मण आत्माएं मम्मी 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 कहते हैं, मां मां मां, डैडी डैडी डैडी, वो निकल रहा है अंदर से, सबकॉन्शियस माइंड से, जहां बहुत गहरे समाया है। बाबा बाबा बेहोशी की हालत में भी निकले अहो भाग्य। दादियों को हमने देखा है बहुत बहुत सीरियस कंडीशन, बाबा बाबा, सबकॉन्शियस में अनहद नाद गूंज रहा है। व्यक्ति कितना याद में था है और स्थिति क्या है उसकी परख होती है जब वो बीमार पड़ता है। बीमारी जिसे चिड़चिड़ा बना दे शायद वो योगी कभी था ही नहीं। संबंध, सर्व संबंध, कभी बाबा ने कहा है यदि बाबा से सर्व संबंध नहीं जोड़े तो जो संबंध नहीं जोड़ा उसी संबंध से किसी ना किसी जन्म में दुख होगा। यदि बाप से अभी पुत्र का संबंध नहीं जोड़ा तो जरूर द्वापर से बेटे के द्वारा बहुत दुख होगा। यदि बाप को यदि पति नहीं बनाया तो पति क्या करेगा, बहुत दुख देगा। सारे संबंधों से जोड़ना, अलग अलग समय पर अलग अलग संबंधों में उसे याद करना। संबंध तीसरा याद अर्थात मिलन, याद की तीसरी परिभाषा है मिलन, भगवान से मिलन। योग का अर्थ ही है मिलना। इंग्लिश में शब्द है योग, YOKE, योग अर्थात टू यूनाइट, टू ज्वाइन। बार बार मिलन, बार बार द डिवाइन यूनियन, और आत्मा की सबसे गहरी प्यास मिलन की। पर उसे यह नहीं पता वो मिलन कैसे मनाए, इसलिए वो मिलन शरीर के तल पर मनाता है। परिणाम दुख। चौथा योग अर्थात याद अर्थात यात्रा। योग क्या है? याद की यात्रा। ऐसी परिभाषा योग की आज तक शास्त्रों में किसी ने नहीं दी कि ये तुम्हारी अंतर यात्रा है, ये तुम्हारी आत्मा की यात्रा है। आत्मा जाती है इस संसार से पार, इस आवाज से पार, इस भीड़ से पार, और उससे मिलन मनाती है। पांचवा योग अर्थात लगन में मगन। खो गई है उसकी यादों में, आत्मा डूब गई है जैसे गोपियां, जैसे मीरा। वो अवस्था चेतना की याद की अवस्था है। बस उसी का चिंतन, उसी का स्मरण। कृष्ण गाती गीते, कृष्ण ध्याति चित्ते, हे जी कृष्ण होती कृष्ण ध्याने। कृष्ण का ध्यान करते करते गोपियां खुद ही कृष्ण बन बैठी है। ऐसी अवस्था कि जिसका ध्यान किया जाए वो पवित्रता का सागर है। उस पवित्रता के सागर को बार बार याद करने से जैसा वो है आत्मा भी वैसी बन जाती है, जैसा वो ज्ञान का सागर है आत्मा भी ज्ञान का सागर बन जाती है। छठवां याद अर्थात आत्माभिमानी स्थिति और परमात्माभिमानी स्थिति। आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना अर्थात अपने आप याद आ जाएगी। जैसे शरीर समझते ही शरीर का सब कुछ याद आ जाता है, भूख लगी, प्यास लगी, पसीना, आराम, सब याद आ जाता है शरीर समझते ही, शरीर से संबंधित। उसी तरह आत्मा समझते ही आत्मा की सारी बातें याद आती है। आत्मा है कहां, कहां से आई, कौन इसका पिता है, कहां थी, कब आई, कब जाना है। याद अर्थात आत्माभिमानी और परमात्माभिमानी स्थिति। सातवां याद अर्थात कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। एकाग्रता अर्थात याद नहीं, परंतु याद अर्थात एकाग्रता। बिना एकाग्रता के याद हो नहीं सकती। और केवल कॉन्सेंट्रेशन करने वाले संसार में बहुत है, परंतु वो योगी नहीं है। एकाग्र इतने हो जाते हैं कि स्थूल वस्तुओं को भी मोड़ देते हैं एकाग्रता की शक्ति से, और बहुत कुछ करते हैं, परंतु वो योगी नहीं है, वो मेडिटेशन नहीं है। परंतु हाँ, मेडिटेशन में एकाग्रता है। याद की एक परिभाषा है संपूर्ण एकाग्रता। अपनी एकाग्रता को बढ़ाना है। अभी जहां बैठे हैं, बैठे बैठे ही जो कुछ सुन रहे हैं वो इतनी एकाग्रता से सुनना है कि जैसे छप जाए। सुनने में एकाग्रता, बोलने में एकाग्रता, योग में एकाग्रता, सेवाओं में एकाग्रता। योग कर्मसु कौशलम, हर चीज में एकाग्रता। चल रहे हैं, उठ रहे हैं, और एकाग्रता के लिए बहुत जागरण की आवश्यकता है। अगला याद अर्थात अटेंशन, याद अर्थात अवधान, अटेंशन, संपूर्ण अटेंशन। अपने अटेंशन को क्या करना है, बढ़ाना है। कई मुरलियों में आता है अटेंशन प्लीज, अटेंशन अर्थात अतिरिक्त ध्यान, एक्स्ट्रा अटेंशन, एक्स्ट्रा ध्यान। एक है ऐसे ही देख लेना, एक है अटेंशन, ध्यान पूर्वक देख, वो याद की परिभाषा है। उसके बाद में याद अर्थात समर्पण, सरेंडर। पेंसिल को कहा कि तुम अपने आप को सौंप देना किसी के हाथ में, उसी तरह जीवन की इस यात्रा में हमें अपने आप को सौंप देना पड़ेगा उसके हाथ में। फिर जो लिखा जाएगा वो मेरा नहीं है, वो उसका है। फिर जो बोला जाएगा वो केवल मुख हमारा है, शब्द उसके है। वीणा ये शरीर है पर बजाने वाला वो है। तन का समर्पण, मन का समर्पण, धन का समर्पण, बुद्धि का समर्पण, संस्कारों का समर्पण, संबंधों का समर्पण, कर्म और कर्म के परिणाम का समर्पण, सात प्रकार के समर्पण है। तन मन धन बुद्धि संस्कार संबंध कर्म और कर्म का परिणाम भी। बहुत सेवा की, बहुत सेवा की, परंतु कुछ रिजल्ट नहीं आया, दुखी नहीं होना है क्योंकि हमने कर्म तो समर्पित कर दिया। बहुत सेवा की, बहुत सेवा की और बहुत अच्छा रिजल्ट आया, अत्यधिक खुशी हो रही है, यह भी ठीक है, परंतु खुशी इतनी ना हो कि खुशी में स्थिति ही डगमग हो जाए। सफलता व्यक्ति को कम सिखाती है, असफलता ज्यादा सिखाती है। निंदा व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाती है, प्रशंसा बाह्यमुखी बनाती है। निंदा से हिसाब किताब जल्दी चुकते होते, प्रशंसा से इतने नहीं होते। इसके लिए हे आत्माओं, जिसको भी निंदा करनी है आ जाओ, फटाफट करो और हमारे हिसाब चुकतु करो और हमको जाने दो। जो अपमान करना है, जो निंदा करनी है, जो ग्लानी करनी है, फटाफट करो और हमारे हिसाब चुकतु करके हमको निकलना है। हमारे पास टाइम कम है, हमारी ट्रेन छूटने वाली है, फटाफट आ जाओ। लास्ट याद अर्थात एनर्जी ट्रांसफरेंस, अर्थात शक्ति उधर से इधर आना, हायर सोर्स से लोअर सोर्स, हायर पावर से लोअर पावर। जब हम याद में है, याद अर्थात उधर की शक्ति इधर आ रही है, खींच रही है आत्मा उससे शक्ति, क्योंकि आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है। आत्मा की बैटरी कैसी है? डिस्चार्ज है, एक दंडी, वो भी ऐसे ऐसे हो रही है, अभी वापस चार्ज करना है। और मोबाइल को यदि चार्ज करना है तो बहुत तेजी से चार्जिंग कब होता है? यदि मोबाइल लगा के रखा और ढीला कनेक्शन है तो चार्जिंग होगा? फर्स्ट है कनेक्शन टाइट करना है। मोबाइल लगा के रखा परंतु स्विच ऑन ही नहीं किया, रात में सुबह देखा 20% 10% उतना ही रह गया। कनेक्शन टाइट, स्मृति का स्विच ऑन और मोबाइल का चार्जिंग चालू है, पर साथ साथ यूज भी कर रहे, तेजी से चार्ज नहीं होगा। और चौथा, अगर मोबाइल को बहुत तेज चार्ज करना है तो फ्लाइट मोड पर डालना पड़ेगा। फ्लाइट मोड पर मोबाइल बहुत फास्ट चार्जिंग होता है। फ्लाइट मोड अर्थात ना हम किसी को बात कर सके किसी से, ना दूसरे हमसे कोई कांटेक्ट कर सके, ना हम किसी को याद करें ना दूसरे हमको याद करें। जो मोबाइल के चार्जिंग की स्टेप्स है वही आत्मा के चार्जिंग की भी स्टेप्स है। कनेक्शन टाइट अर्थात संबंध गहरा। स्विच ऑन अर्थात स्मृति का स्विच ऑन, और जब चार्जिंग चालू है तो उसको यूज नहीं करो। एकाग्रता, सांसारिक सभी चिंतन से परे, और फ्लाइट, उड़ती कला, एनर्जी ट्रांसफरेंस। तो यदि याद को एक रस बनाना है तो ये 10 की 10 बातें होनी चाहिए। पहला बताया स्मृति, जैसे ही स्मृति आती है स्वरूप तैयार हो जाता है। अभी यहां बैठे हैं और 10 साल पहले हुई हुई एक बहुत दर्दनाक बात याद करो, हमारा कोई अपना जिसने शरीर छोड़ दिया था, जिससे बहुत प्यार था, मोह था, अचानक आंसू आ जाएंगे। स्मृति और स्वरूप, स्मृति का अभ्यास करना, मूल्यों में आता है स्मृति स्वरूप भव। दूसरा बताया, दूसरा संबंध, अपने संबंध को रिवाइज करना है, स्ट्रांग बनाना, उससे जोड़ना है खुद को। तीसरा मिलन, मिलन की अलग अलग विधियां ढूंढनी है, और एक विधि है सारे दिन भर क्या करेंगे, बाबा का आह्वान, क्या करेंगे आह्वान, आ जाओ। और दूसरा उसको बार बार शुक्रिया, धन्यवाद, ये जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ, शुक्रिया। कंप्लेंट नहीं करते रहना है हमेशा, कंप्लेंट बॉक्स। और याद केवल अमृत वेला नहीं, केवल मुरली नहीं, परंतु दिनचर्या में थोड़ी थोड़ी धधकती हुई अग्नि एकदम बुझ ना जाए, थोड़ी 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 याद, मिलन होता है। चौथा यात्रा, जैसे उस यात्रा में तैयारी की जाती है, इस यात्रा में भी तैयारी की आवश्यकता है। जैसे उस यात्रा में ये चीजें ले जाओ, वो चीजें ले जाओ। जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो ध्यान रखते हैं कोई पाप ना हो, यात्रा पर जाते हैं तो ध्यान रखते हैं किसी को दुख नहीं देना है, यात्रा पर जाते हैं तो चीजें साथ में लेके जाते हैं, और दान करते हैं जाते जाते, प्रभु चिंतन करते हैं, यात्रा पर जाते हैं तो किताबें पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, यात्रा पर जाते हैं तो प्रवचन सुनते हैं, मन को स्वच्छ रखने का प्रयत्न करते हैं, और यात्रा पर जाते हैं तो सहन भी करना पड़ता है। जो उस यात्रा में है वो इस यात्रा में भी है, वो है जिस्मानी यात्रा, ये है रूहानी यात्रा। यात्रा अगला, लगन में मगन, कैसे होंगे, कैसे होंगे मगन, कैसे हो जाए, प्यार बढ़ाना पड़ेगा, परमात्मा प्रेम बढ़ाना पड़ेगा। जब तक प्रेम नहीं बढ़ता लगन में मगन हो नहीं सकते, खो जाए आत्मा। अगला आत्माभिमानी और परमात्माभिमानी स्थिति, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है दिनचर्या में। ये सब आत्माएं हैं, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक स्थिति, मैं भी और ये भी, मैं भी और ये भी। एक मुरली में बाबा ने कहा है किसी के भी वर्तमान संस्कारों को देखो ही नहीं, केवल आदि और अनादि संस्कार को देखो बस, चाहे जो जो कर रहा है करने दो, पर ये नहीं भूलना ये महान आत्मा है, ये श्रेष्ठ आत्मा है, इस समय परवश है, इस समय उन पर है, इस समय गलती पर है, इस समय इसे पता ही नहीं ग्रहचारी बैठी है, इस समय माया की अधीनता है, कोई क्रोध कर रहा है माया के वश है, रहम दे। सभी के अनादि संस्कारों को ही देखना है तो ही स्थिति अजल रहेगी। ऊपर नीचे आए तो शरीर संस्कार भाव टकराव ऊपर ही रहना है, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन एकाग्रता का अभ्यास करना है। कैसे करेंगे? मुरली क्लास में जब बैठते हैं तो ऐसे बैठना कि मुझे ऐसी चीज आने वाली है इसमें। अगर हमको रात को स्वप्न आ जाए, बाबा दिख जाए और बाबा कहे कि आज की जो मुरली है ना उसमें एक ऐसा रहस्य मैं बताने वाला हूं जिससे तुम्हारी किस्मत बदल जाने वाली है। 6 बजे पहुंच जाएंगे सेंटर, 1 घंटा योग पहले कि आज कुछ मिलने वाला है पावरफुल। ध्यान से सुनेंगे एक एक शब्द। रोज ऐसे बैठना मुरली में जैसे कुछ तो नया मिलने वाला है एकदम। या कोई ज्योतिषी कह दे कि कल तुम्हारा अंतिम दिन है, शाम को 6 बजे ओम शांति होने वाला है, पर हां दिन में यदि कोई प्रवचन तुम सुन लो, बाहर का कोई ज्योतिषी कहे, हो सकता है उस सुनते सुनते उसमें तुम्हें कुछ मिल जाए। अच्छा, ज्योतिषी के पास कौन कौन जाता है जरा हाथ खड़ा करो देखने के लिए। पैसा है क्या, ये है क्या, वो है क्या, कौन कौन जाता है? कोई भी नहीं, माता है तो जरूर जाती होगी। मंदिर में कौन कौन जाता है पूजा करने? हमारे पास एक, हम एक जगह थे, एक छोटा सा कुमार था, वो सारी इंफॉर्मेशन लाता था। ये माता जाते जाते गणपति के मंदिर में जाती है, ये माता जाते जाते हनुमान जी को भी कुछ कुछ करके जाती है। साथ साथ ज्ञान भी चालू है और भक्ति भी चालू है। बैलेंस कॉन्सेंट्रेशन एकाग्रता से सुनना है। और कभी कभी ऐसे सुनना, कुछ भी नहीं लिखना, डायरी सब बंद, केवल सुनना। और सुनने के बाद अलग से बैठ के याद करना क्या क्या सुना। एक अभ्यास, जरूरी नहीं हर बार डायरी खोल के लिखते रहो सारा। कितनी डायरियां भर दी, पूरे अलमारी की अलमारी भरी है मुरलियों से। डायरी में मुरली आए और बुद्धि खाली, जो कुछ है उसमें है, इधर जाने नहीं दिया, इधर से सुना हाथ से इधर लिखा, इधर प्रवेशता ही नहीं हुई, टेंशन। अगला है अटेंशन, हर चीज को अटेंशन से देखना, ऑब्जर्वेशन पावर। उसके लिए एक अभ्यास ये है, ये एक लौकिक अभ्यास, जैसे अभी स्टेज पर यहां क्या क्या है एक बार देख लेना, आंखें बंद करना, याद करने की कोशिश करना, वो फोटो क्या है, पीछे क्या है, माइक है उसका रंग कौन सा है, वायर है उसका रंग कौन सा है, फूल थे कौन सा रंग है। ये टेक्निक्स है लौकिक की, पर अलौकिक में भी प्रयोग की जा सकती है। अटेंशन, उसके बाद सरेंडर। एक सूफी संत एक शहर से गुजर रहा था, देखा कि एक बहुत बूढ़ी बूढ़ी माता है, घर का सारा कचरा साफ कर रही है, और वो सारा कचरा लाया और वहां शिवलिंग है उस शिवलिंग पर चढ़ा दिया। एक दिन देखा कुछ नहीं बोला, दूसरे दिन फिर देखा वो माता अपने घर का सारा कचरा साफ कर रही है और ओम नमः शिवाय शिवलिंग पर कचरा भी चढ़ा दिया। उसने पूछा ये तुम क्या कर रही हो? धर्म ग्लानी, वो कहती है मेरे पास जो कुछ है मैं सब भगवान को दे देती हूँ, सब कुछ उस पर चढ़ा देती हूँ, ये कचरा क्यों नहीं रखू, अपने पास क्यों रखू, वो कचरा भी मैं चढ़ा देती हूँ उसके ऊपर। वो कहते हैं अरे अरे तुम ये बहुत बड़ा पाप कर रही हो। उधर शिव जी अपसेट हो जाएंगे, फिर मत बोलना। वो संत घर जाता है, रात में एक स्वप्न देखता है और स्वप्न में देखता है शिव जी बैठे हुए हैं। सुबह का समय है और वो संत वहां आया है और जैसे बैठे हुए अभी दरबार लगने वाला है कि उसके सिर पर कचरा आके गिरता है, तो वो शिव जी कहते ये बुढ़िया बिल्कुल नहीं सुधरेगी, साफ सुफ करता है, जटाए भी है बहुत से। और फिर वो संत दिन भर इंतजार करता है और भी कुछ गिरता है के सर पर, क्योंकि सारी दुनिया भर के लोग फूल दूध क्या क्या चढ़ा रहे, कुछ भी नहीं गिरा। शाम तक इंतजार करता है, बस वो बुढ़िया का कचरा सुबह सुबह गिरा, उसके बाद में मिष्ठान न पकवान कुछ भी नहीं गिरा। शाम को पूछता है वो सब कहाँ है जो दुनिया वाले चढ़ा रहे। शिव जी कहते हैं वो जो चढ़ा रहे हैं झूठा चढ़ा रहे, वो मुझ तक नहीं पहुंचता, वो जो चढ़ा रहे समग्रता से नहीं चढ़ा रहे, और वो जो माता है उसका समर्पण समग्र है, इंटीग्रेटेड सरेंडर। और जो समग्र चढ़ाएगा, जो पूर्ण चढ़ाएगा, उसी का मुझ तक पहुंचेगा। जो आधा आधा चढ़ाएगा, जो आधे दिल से चढ़ाएगा, जो झूठा चढ़ाएगा, ऊपर ऊपर से चढ़ाएगा, ऐसा भगवान के दर पर स्वीकार नहीं होता। झूठ यहां चल न सके, वो सत्यम शिवम सुंदरम है। दू की नहीं दू, दू की नहीं दू, हाथ में है। जैसे अंग्रेजी लेखक मार्क ट्वेन ने अपनी कहानी में लिखा है, जीवन कहानी में, वो एक बार चर्च में गया, चर्च में ऐसी ऐसी लाइन थी, पीछे जाके बैठा और वो जो पादरी था उन्होंने भाषण दिया, परोपकार दान परमात्मा समर्पण सब कुछ दे दो प्रभु के चरणों में। इतना नशे में आ जाता है कि आज तो $100 दे दूंगा, प्रवचन पूरा होता है, सुनते सुनते सोचता है $100 तो आज देना ही है। और कृष्ण में वो कटोरा घूमता है लाइन में, एक 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 दान पेटी। प्रवचन जब पूरा होता है तो लोग देना चालू करते हैं, तब वो सोचता है ये $100 थोड़ा ज्यादा है, $80 दूंगा। भगवान ने ऐसा थोड़ी ना बोला है, सौ दो देना है बस। वो कटोरा और आगे घूमता है और आगे घूमता है और आगे देखता है लोग कितने दे रहे हैं, कितने तो 60 दिए। वो कहता है 80 बहुत हो गया, 50 इनफ है, 50 दूंगा अपने। वो कटोरा और आगे घूमता है, उसकी रो में आता है, उसकी लाइन में, वहां के लोग कोई 30 दे रहा है, कोई 20 दे रहा है, वो सोचता है 50 20 ठीक है 20 दूंगा $20। बाजू वाले तक आता है, तब तक सोचता है 50 बहुत ज्यादा है, 10 से काम चलाता हूं। भगवान ने ऐसा थोड़ी ना बोला है, हमने तो अपने आप को समर्पित कर दिया है, पैसे का तो क्यों बात है इसमें। पैसे कभी मांगा है क्या भगवान ने? विचारों में परिवर्तन होने लगा और जब कटोरा उसके सामने आया, इधर उधर देखा और उसमें से पैसे निकाल लिए। और फिर जाते जाते सोचने लगा ये मैंने क्या कर दिया, निकले थे दान देने, चोरी करके आ गए। मन छल करता है, ट्रिक्स्टर। याद अर्थात समर्पण और लास्ट याद अर्थात एनर्जी ट्रांसफर, शक्ति का आदान प्रदान या खींच लेना। तो ऐसी 10 परिभाषाएं याद रखना, ठीक है। कुमार इंतजार कर रहे ऑप्शन।
तुमने बिठाया है आटा। जब